ये वीडियो कई भाषाओं में डब और सबटाइटल किया गया है। ज्यादातर डिवाइसेस पर आप YouTube की सेटिंग्स पर जाकर अलग भाषा चुन सकते हैं। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि इंग्लिश यानी इसकी ओरिजिनल भाषा के अलावा डब और सबटाइटल कई जगहों पर एक दूसरे से काफी अलग हैं। और ऐसा अक्सर होता है, खासकर टीवी शोज वगैरह में, और इससे हम जैसों को काफी परेशानी होती है जो शोज देखते वक्त सबटाइटल्स भी पढ़ते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबटाइटल और डबिंग अलग अलग लोग और अलग अलग टीम्स करती हैं। और इसकी वजह जानी हो तो मुझे आपको ले चलना होगा एक सफर पर जिसमें होंगे बतख, एक रोलर कोस्टर और ये एडवर्टीजमेंट। इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं NordVPN। ये मजाक नहीं है, इस वीडियो को सच में स्पॉन्सर किया है NordVPN ने, जो ट्रैवल करते वक्त मेरे बहुत काम आता है। आप NordVPN.com/TomSquad पर जाकर अभी चल रहे ऑफर्स जान सकते हैं। खैर, हमने ये एडवर्टीजमेंट जिन भाषाओं में ट्रांसलेट किया है उनमें सबटाइटल्स और डबिंग ज्यादातर सेम ही होंगे। जैसे फ्रेंच, स्पैनिश और पोर्चुगीज में शब्दों के क्रम तकरीबन इंग्लिश जैसे ही होते हैं और ट्रांसलेशन आसान है। लेकिन हिंदी के सबसे आसान ट्रांसलेशन में कंपनी का नाम वाक्य के बीच में आता है। और आजकल की प्रोफेशनल डबिंग में कोशिश की जाती है कि जो मूवमेंट है लिप का उसे काफी बारीकी से मिलाया जा सके। अब हिंदी में ये वाक्य ऐसे भी बोला जा सकता है जिससे कंपनी का जो नाम है वो वाक्य के अंत में हो। डबिंग टीम ने वही तरीका अपनाया और लिप्स के मूवमेंट बिल्कुल मेल खा गए, पर सबटाइटलिंग टीम को इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई, इसलिए वाक्यों में फर्क हो गया। जापानीज में भी यही दुविधा रही, पर डबिंग टीम ने ऐसा अनुवाद चुना जिससे होठों का जो चलन है वो काफी हद तक मैच कर गया। आप सोचेंगे कि आखिर ये लोग डबिंग स्क्रिप्ट को ही क्यों नहीं ले लेते और उसे सबटाइटल में बदल देते, दोबारा वही काम करने की क्या जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि सबटाइटल की अपनी कुछ सीमाएं हैं। खैर, मैंने इस वीडियो की ट्रांसलेशन टीम को जानबूझकर मुश्किल उदाहरण दिए हैं। कुछ साल पहले मैंने YouTube के कॉपीराइट सिस्टम पर एक वीडियो बनाया था और उसमें एक ऐसे गाने का जिक्र है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मरून 5 की मेमोरीज एक दिमाग खराब करने वाली रचना है जिसमें कैनन इन डी की शुरुआत तो है पर कभी खत्म नहीं होती, जिसकी वजह से ये हमारे दिमाग में अल्फ्रेड बेस्टर के द डिमोलिश्ड मैन की जिंगल की तरह अटक जाती है और मुझे इससे नफरत है। आजकल ज्यादातर भाषाओं में सबटाइटलिंग की सोच यह है कि बोलने से पढ़ना काफी तेज होता है। चाहे जितनी तेजी से बोला जा रहा हो तब भी हर शब्द स्क्रीन पर डाला जाता है, दर्शक पॉज कर सकता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर आप 10-15 साल पहले सबटाइटल किया हुआ कोई इंग्लिश शो देखते हैं, जैसे कोई पुराना सीरियल या डीवीडी पर फिल्म, तो वो सबटाइटल्स सिर्फ और सिर्फ कही गई बात को ही समझाते हैं। स्टाइल गाइड में साफ लिखा होता था कि सावधानी से और समझबूझ से सबटाइटल की एडिटिंग की जाए, क्योंकि जरूरी यह था कि सभी को बात समझ में आ जाए भले ही वो धीरे पढ़ते हों, क्योंकि तब पॉज करके पीछे लौटना मुश्किल था। और वैसे भी जो अच्छी तरह से सुन पाता था वो सबटाइटल क्यों पढ़ेगा। ऐसा तो नहीं कि उन दिनों हमारी जेबों में छोटे टीवी हुआ करते थे या साउंड मिक्सिंग में चेंजेस हुए तो डायलॉग सुन पाना मुश्किल हो जाता। अभी जो मरून 5 के खिलाफ भाषण दिया है उसके ओरिजिनल इंग्लिश वीडियो में मैंने जिक्र किया था अल्फ्रेड बेस्टर के डिमोलिश्ड मैन का, जो कि इंग्लिश में भी ज्यादा मशहूर नहीं है। तो जापानीज दर्शकों के लिए जिन्होंने कभी उसके बारे में नहीं सुना है, वहां के सबटाइटल ट्रांसलेटर ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करके बस कुछ ही शब्दों में अपने दर्शकों को समझा दिया। किसी को शायद गलत लगे पर मुझे ये डिसीजन बिल्कुल सही लगा। अगर उन्होंने किसी जापानीज एक्टर से वैसे ही हांफते हुए डबिंग करवाई होती तो फिर सबटाइटल पढ़ने वालों को और भी परेशानी होती। वैसे वॉइस आर्टिस्ट ने बहुत कमाल किया है, ऐसा करना आसान नहीं रहा होगा। और इसमें तो उनको सिर्फ एक शख्स की बोली हुई चीज ट्रांसलेट करनी पड़ी। सोचे कोई रियलिटी शो होता जिसमें 6 लोग तेजी से बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हड़बड़ाहट में एक दूसरे को टोक रहे होते तो सबटाइटल्स को संक्षेप में बताना होता, जबकि डबिंग में लोग आपस में बहस कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि कुछ जापानीज दर्शकों को ये इशारा नहीं मिल पाएगा? ट्रांसलेशन करते वक्त ये एक और चुनौती होती है कि किस हद तक शब्दों का ट्रांसलेशन होना चाहिए और किस हद तक सिर्फ मतलब का। चलिए लीजिए एक और मुश्किल उदाहरण।
किसी को ये चूजे चाहिए क्या? चूजों को चूज करिए।
इस जोक को इंग्लिश से ट्रांसलेट करना तकरीबन नामुमकिन है। इसमें एक जोक के साथ साथ एक इंग्लिश स्लैंग भी इस्तेमाल किया गया है। ये जानना जरूरी है कि गोइंग का मतलब आवाज निकालना भी है, और ये भी जानना कि चीप इंग्लिश में नन्हे पक्षियों की आवाज को कहते हैं, ची ची ची। और ये भी जानना हुआ कि गोइंग चीप की स्पेलिंग बदल जाए तो उसका मतलब होता है कि कुछ सस्ते दाम में बिक रहा है। मुझे इस उदाहरण पर ट्रांसलेटर्स के जवाब देकर मजा आया। किसी ने एक एक शब्द को ट्रांसलेट किया और जोक को अनदेखा कर दिया। कोई बात नहीं, पर मैं कुछ और उदाहरण पेश करना चाहूंगा। देखिए, पोर्चुगीज सबटाइटलिंग और डबिंग टीम ने हूबहू जोक को ट्रांसलेट किया, और यही किया स्पैनिश सबटाइटलर्स ने। गेंजो का दोनों भाषाओं में मतलब है बतख और कंसारो मतलब थका हुआ, तो दोनों शब्दों को जोड़कर बनाया गया गंसारो। तो अब जोक यह है कि क्या किसी को बतख चाहिए क्योंकि मैं उनसे थक चुका हूं, क्या बात है, लाजवाब। और फ्रेंच और स्पैनिश डबिंग टीम ने इस पर अपनी भाषा में पक्षियों की आवाज पर अलग अलग तरह से तंज मारे, क्योंकि हर भाषा में जानवरों की आवाजें अलग होती हैं, जो कि कमाल की बात है। और मुझे ये बहुत पसंद है। ये सिर्फ शब्दों का ही नहीं बल्कि इरादे का भी ट्रांसलेशन हुआ है। आप सोच रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कई एआई टूल्स का इस्तेमाल किया है और एक बड़े से लैंग्वेज मॉडल से ट्रांसलेट करवाया है, और आज की तारीख में यानी 2023 में भी उस बारीकी को, सही मतलब को और अभिनय को दर्शाने में इंसानों की जरूरत पड़ती है। कम से कम बतख वाली वीडियो में मेरे होंठों के चलन को मिलाना जरूरी नहीं था, लेकिन बतख की आवाज को मिलाना पड़ा, क्योंकि मैं उस वक्त बोल रहा था तो उन्हें वीडियो के दूसरे हिस्से में जाना पड़ा जो आपने देखा नहीं, और पीछे की आवाज को कॉपी पेस्ट करके बतख की दूसरी आवाज डालकर मिलाना पड़ा और उसे सिंक्रोनाइज करना पड़ा, मतलब बतख की होंठों के चलन को मिलाना पड़ा। उसके चोंच को, मेरा मतलब उनके होंठ नहीं होते लगता तो नहीं है। और ये सब आप देख सकते हैं इस उदाहरण में। पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैं अपने रोलर कोस्टर के डर को हटाना चाहता था और मैंने वो कर भी लिया, और जैसे ही मेरा डर खुशी में बदला, नेमेसिस नाम के राइड पर मैं कुछ ऐसे चिल्लाया,
यस ये बात
इसका ओरिजिनल इंग्लिश है हैबिट। कैसे करेंगे ट्रांसलेशन हैबिट का, इसका कोई मतलब ही नहीं है, उससे भी ज्यादा कोई अनजाना सा जुमला है। ब्रिटेन के अलग अलग हिस्सों में लोग इसे अलग अलग मतलब से बोलते होंगे, ये बिल्कुल नामुमकिन है कि इसे गूगल करें। रही मेरी बात तो ये खुशी से जीत पाकर एड्रेनलिन जोश से भरी पुकार कामयाबी की चीख है, एक ऐसी चीख जो निकलती है जब आपकी टीम गोल करती है या फिर अपने दोस्त को ऐसे वक्त पर जोश दिलाती है जब वो दो बड़े पैग एक साथ गटक जाते हैं, मतलब लौंडों की पुकार जैसे यार दोस्तों के बीच में बोली गई। मैंने ट्रांसलेटर्स को इस बार ये सब चीजें एक नोट में लिखकर भेजी थी, पर ज्यादातर उन्हें कोई ये सब अलग से बताता नहीं है, उन्हें सिर्फ शो और शायद उसकी स्क्रिप्ट ही मिलती है। तो सुनिए इस वीडियो की चीख, वो भी अलग अलग भाषाओं में।
सेलू
Yes! Yeah, bud! Yes!
Subtitling team जो चाहे वो शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उन्हें उसे स्क्रीन पर बैठाना होता है। डबिंग टीम अपने एक्टर से अभिनय करवाने की चाहे जितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, पर होंठों का चलन मिलना चाहिए, इसलिए डबिंग और सबटाइटलिंग में फर्क होता है। और इसका एक बेहतरीन नमूना है ये। इस एडवर्टीजमेंट को 5 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। आप चाहे जो भी भाषा बोलते हो, आपको दबाना होगा NordVPN का मैजिक क्विक कनेक्ट बटन और आपको लगेगा जैसे आपका फोन या कंप्यूटर 60 देशों में से किसी में है, अल्बेनिया से वियतनाम तक। तो अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं और चाहते हैं कि वेबसाइट वहां की भाषा में सब ट्रांसलेट ना करे, या किसी और देश से कुछ ऐसा देखना है जो आपके देश में ब्लॉक किया गया है, तो आप उसे देख सकते हैं। पर पहले इस स्ट्रीमिंग सर्विस के नियम और कानून अच्छे से समझ लें। NordVPN काम करता है विंडोज, लिनक्स, मैक, iOS और एंड्रॉइड पर, वो भी एक साथ 6 डिवाइसेस पर, साथ में 30 दिन में पैसे वापस मिलने की गारंटी के साथ। तो अगर यकीन नहीं हो रहा है तो इस्तेमाल करके देखो। जब मैंने पहली बार इस्तेमाल किया तो सोचा था कि मैं कभी कभी इस्तेमाल करूंगा, लेकिन पिछले साल ये मेरे बहुत काम आया और मैंने इसे बहुत इस्तेमाल भी किया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि NordVPN मेरे लिए बहुत ही काम की चीज साबित हुई है, वाकई। तो जाइए NordVPN.com/TomScott पर या स्कैन कीजिए QR कोड ताकि आपको बेहतरीन डील्स मिल सके, भले ही आप इसे फ्यूचर में देख रहे हो। ये काम कर गया, बढ़िया।